लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, आगमन का दूसरा रविवार आज हमें आने वाले के स्वागत में तैयारी का मर्म समझाता और अपने जीवन में उसे अमल करने का आह्वान करता है। यदि हम अपने जीवन में किसी भी तैयारी के संदर्भ को देखें, तो यह हमारा ध्यान साफ सफाई की ओर कराता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या भौतिक। अपनी साफ सफाई के क्रम में हम अपने लिए अच्छे और नए परिधानों की व्यवस्था करते हैं। हम अपने शारीरिक सफाई करते और अपने को दुरुस्त करते हैं। हम अपने घरों, चौराहों और इर्द गिर्द की सफाई करते और उसे अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। श्रोताओ, आगमन का दूसरा रविवार हमारा ध्यान तैयारी के क्रम में उसी साफ सफाई की ओर कराता है। आइए हम सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि मैंने मुक्तिदाता की आगवानी हेतु अपने में किस तरह की तैयारी शुरू की है। मेरे व्यक्तिगत मनोभाव क्या हैं? क्या मैं अपने मुक्तिदाता के स्वागत हेतु आंतरिक रूप से अपने को तैयार पाता हूँ?
उन दिनों योहान बपतिस्मा प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी इसायस ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। योहान ऊंट के रोंग का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियां और बन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यर्दन प्रांत के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर योहन ने उनसे कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें। वह अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे हृदय के अंतस्थल में पश्चाताप के भाव जगाए, जिससे हम जीवन जीने के अपने पुराने रूप रंग और आकार प्रकार में परिवर्तन ला सकें। श्रोताओ, इसायस नबी के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ आने वाले मुक्तिदाता के न्यायपूर्ण कार्यों का जिक्र करता है। मुक्तिदाता ईश्वर पर ईश्वर का आत्मा छाया रहेगा और उस आत्मा से प्रेरित वह अपने लोगों का न्याय करेगा। वह दरिद्रों और दीन दुखियों की सुधि लेगा और उनके पक्ष में खड़ा होते हुए उनके अत्याचारियों को अपने शब्दों के डंडे से मारेगा। वह कमजोरों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ईश्वर के इस न्याय को नबी इसायस एक ऐसे परिदृश्य में प्रकट करते हैं जहां हम दो विरोधी पक्षों के बीच दो विषम परिस्थितियों में एक संपूर्ण एकता, शांति और भयमुक्त स्थिति को कायम होता हुआ देखते हैं। श्रोताओ, तैयारी के इस क्रम में संत पौलुस द्वारा रोमियों को लिखा गया पत्र हमें धैर्य और सांत्वना में बने रहने का आह्वान करता है। हमने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है कि बहुत बार तैयारी का समय, जो हमारे लिए इंतजार की घड़ी होती है, हमें अधीर बना देती और हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खोने का अर्थ हम अपने जीवन की अन्य सारी व्यवस्थित बातों को अव्यवस्थित कर देते हैं। अतः ईश्वर का वचन हमें अपने में धैर्यवान और सांत्वना में बने रहते हुए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बनाए रखने का आह्वान करता है, जिससे हम ईश्वर की महिमा कर सकें। आज का सुसमाचार हमें इस विषय वस्तु के संदर्भ में एक कदम और आगे ले चलता और हमें अपने जीवन में व्यवस्थित रहने हेतु अपनी अव्यवस्था का परित्याग करने का निमंत्रण देता है। इसे योहन बपतिस्ता पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है परिभाषित करते हैं। वे हमारे जीवन को मुक्तिदाता के लिए अच्छा और सीधा करने की चुनौती देते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यही है कि आगमन के इस पुण्य अवधि में हम अपने पुराने जीवन का परित्याग कर नए जीवन में प्रवेश करने हेतु बुलाए जाते हैं। हमें अपने पुराने स्वभाव का परित्याग करने का निमंत्रण दिया जा रहा है। योहन बपतिस्ता स्वयं मुक्तिदाता के आगम वक्ता स्वरूप दुनिया में भेजे गए, जिसे वे अपने कार्यों के माध्यम मुक्तिदाता हेतु मार्ग तैयार करते और यर्दन नदी में लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देते हैं। वे अपने इस कार्य को ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा में करते हैं। वे उन्हें चुनौती देते जो अपने में खाना पूर्ति हेतु उनके पास बपतिस्मा ग्रहण करने आते हैं। वे फरीसियों, सदूकियों और शास्त्रियों को, जो दूसरों का शोषण करते और दिखावा भरी जिंदगी जीते, उन्हीं के विचारों और स्वभाव के अनुरूप चुनौती देते हुए ललकारते हैं, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने को सचेत किया? वे उन्हें इस बात पर कि वे अब्राहम की संतान हैं, अपने में घमंड करने के बदले पश्चाताप करने और जीवन में परिवर्तन लाने की कड़ी हिदायत देते हैं। वे अपने बाद आने वाले मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के बारे में लोगों को बतलाते हुए कहते हैं कि वे जो उनके बाद आने वाले हैं, वे उससे भी महान हैं, जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्रदान करेंगे। श्रोताओ, यह हमारा ध्यान पश्चाताप के फल की ओर कराता है। एक पश्चातापी हृदय अपने में अहंकारी और घमंडी नहीं होता, वरन यह अपने में दीनता को धारण करता है। हम अपने जीवन में नम्र और दीनता के भाव धारण करने के द्वारा ही ईश्वरीय आशीष और कृपा को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं, जो हमें ईश्वर की नजरों में ठोस धन अनाज बनाता है, जिसे वे अपने बखारों में जमा करने की चाह रखते हैं। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपनी तरह नम्रता और दीनता के भाव धारण करने की कृपा दें, जिससे हम अपने को उनकी तरह दीनहीन स्वरूप स्वीकार कर सकें।
जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन तेरा नमन। जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन तेरा नमन। हर एक एक समान है तेरी निगाह में, चलते रहे कदम सदा बस तेरी राह में, अर्पण करे तुझे सम्मान के सुमन। जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 7 दिसंबर के ट्वीट संदेश में ईश्वर के प्रति प्रेम एवं पड़ोसियों के प्रति प्रेम पर प्रकाश डाला। ईश्वर के प्रति प्रेम एवं पड़ोसियों के प्रति प्रेम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संत पापा फ्रांसिस ने संदेश में लिखा, ईश्वर की सच्ची पूजा पड़ोसियों के प्रति प्रेम में प्रकट होती है। संत पापा ने कैथोलिक प्रेरित गैर सरकारी संगठन के 4th मंच के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें जरूरतमंद लोगों की मदद करने हेतु धन्यवाद दिया। कैथोलिक प्रेरित गैर सरकारी संगठन के सदस्य विश्व के विभिन्न देशों से समावेश विषय वस्तु पर अपने अनुभवों को साझा करने एवं उन पर चिंतन करने के लिए रोम में एकत्रित हैं। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, मैं आपके इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके द्वारा आप सबसे कमजोर लोगों को मदद करने के लिए ठोस साक्ष्य देना चाहते हैं। इस प्रकार आप हमारे विश्व को एक आम घर बनाना चाहते हैं। संत पापा ने गौर किया कि संगठन के सदस्य उन स्थानों पर उपस्थित होकर लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं जहां मानवाधिकार, लोगों के रहने की स्थिति, निवास, शिक्षा, विकास एवं अन्य सामाजिक समस्याओं पर विवाद होते हैं। संत पापा ने कहा कि इस तरह आप वैटिकन द्वितीय महासभा में उल्लेखित विश्व में कलीसिया की उपस्थिति, उसका जीवन और उसकी गतिविधि को प्रदर्शित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्रिस्त सहयोग की बात करते हुए महासभा में कहा गया है कि विभिन्न कैथोलिक अंतर्राष्ट्रीय इकाएं शांति और भाईचारा के रास्ते पर राष्ट्रों के समुदायों की मदद कर सकते हैं। इन इकाइयों को प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, आर्थिक मदद एवं आपसी सहयोग के द्वारा सुदृढ़ किया जा सकता है। संत पापा ने संगठन के सदस्यों के सामने 3 मुख्य बातों की सलाह दी, सदस्यों का प्रशिक्षण, आवश्यक साधन उपलब्ध होना तथा दलीय कार्य के द्वारा समन्वय की पहल। उन्होंने कहा कि दुनिया की जटिलता एवं मानवीय संकट के बीच जहां हम रहते हैं, यह हमें जीवन का साक्ष्य देने, संवाद करने और मानव प्रतिष्ठा पर सकारात्मक चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है। यह हमें 2 चीजों के लिए निमंत्रण देता है, दृढ़ विश्वास एवं साहस, जो यह जानने से आता है कि हम दुनिया में ईश्वर के कार्यों के माध्यम हैं। इसके लिए संत पापा ने कलीसिया की सामाजिक शिक्षा का सहारा लेने की सलाह दी। संत पापा ने उन्हें व्यवसायिकता और अपनी कलीसियाई पहचान में बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त करने की आवश्यकता बतलाते हुए संत पापा ने यीशु द्वारा बतलाए गए अशर्फियों के दृष्टांत का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे लिए भी उन साधनों की आवश्यकता है हमें निराश नहीं होना चाहिए, किंतु मन में इस बात को रखना चाहिए कि कलीसिया ने हमेशा सीमित साधनों से महान कार्य किया है। उन्होंने कहा कि निश्चय ही उन साधनों का उत्तम उपयोग किया जाना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह हमारा नहीं है, बल्कि सब कुछ ईश्वर की ओर से आता है। संत पापा ने उन्हें स्मरण दिलाया कि आज विश्व उनसे एक नवीन दृढ़ता एवं वार्ता हेतु एक नए रास्ते की खोज करने की मांग कर रही है। अंत में संत पापा ने संगठन के सदस्यों से कहा कि कलीसिया एवं पोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनके कार्यों, समर्पण और साक्ष्य की आवश्यकता है। अतः उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि वे अपने कार्यों में साहस और नवीकृत आशा के साथ आगे बढ़ें।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 7 दिसंबर को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में सिनेमा बिक्री संचालकों के कैथोलिक संघ के करीब 400 सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने संगठन की 70वीं सालगिरह समारोह में शरीक होने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह वर्षगांठ 70 साल पहले की गई प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने का अवसर है। इसके लिए मैं आपको 3 कार्यों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहला, संचार। जैसा कि हम जानते हैं, सिनेमा लोगों को एक जगह जमा करने का सबसे बड़ा साधन है। विशेष रूप से युद्ध के बाद कई सामूहिक क्षणों में समाज को एक सामाजिक परिवेश में पुनर्निर्माण में एक असाधारण तरीके से योगदान दिया। फिल्मों द्वारा लोगों में आशा और जीवन जीने के उत्साह को स्थानांतरित किया गया। यह जीवन जीने के लिए एक शैक्षिक और प्रशिक्षण का क्षण भी होता था। संत पापा ने कहा, हम ख्रिस्तियों को उस संचार को प्रकट करने के लिए कहा जाता है जो हमारी पहचान को विश्वासियों के रूप में चिन्हित करता है। वास्तव में विश्वास एक रिश्ता है, एक मुलाकात है, और ईश्वर के प्रेम के आवेग के तहत हम एक दूसरे को समझ सकते, एक दूसरे को स्वीकार कर सकते और एक दूसरे के लिए उपहार बन सकते हैं। दूसरा है रचनात्मकता। किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति की तरह फिल्म रचनात्मकता का फल है, जो इंसान की विशिष्टता, उसकी आंतरिकता और इरादे को उजागर करती है। संत पापा ने उन्हें रचनात्मकता को जगह देने, कल्पना करने और नए रास्ते की खोज करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा, रचनात्मकता मौलिक है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक मीडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि सिनेमा भी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के सामने चुनौतियों का सामना कर रही है। आपके संघ और संगठन यदि संग्रहालय नहीं बनना चाहते हैं, तो इन चुनौतियों को सक्रिय और रचनात्मक रूप से लेना चाहिए। तीसरा, दृष्टि। सिनेमा कार्य की दृष्टि मानव आत्मा में कई झलक दिखा सकती है। यह सब उस भावनात्मक आवेश पर निर्भर करता है जो दृष्टि को दिया जाता है। वहाँ हंसी, क्रोध, भय, भावना, रुचि हो सकती है। यह सब दृष्टि में जानबूझकर जुड़ा हुआ है। आँख संचार करती है और जीवन शैली में संलग्न होती है। भविष्य के रास्तों में खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए अतीत की बाधाओं को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जुनून और अपनी क्षमता को कलीसियाई अर्थ और शैली के साथ जिएं। उधर उत्तर प्रदेश में एक 23 वर्षीय महिला पर हमला किया गया और वर्तमान में वह अपने जीवन के लिए लड़ रही है। भारतीय कलीसिया महिलाओं के खिलाफ सभी हिंसाओं के लिए दुख और शर्म महसूस करती है। लखनऊ के धर्माध्यक्ष जेराल्ट जॉन मतियास ने एशिया न्यूज से बात करते हुए कहा, 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में एक युवती अपने बलात्कारियों के खिलाफ गवाही देने के लिए उन्नाव जा रही थी, लेकिन बलात्कारी और 3 अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया, उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। धर्माध्यक्ष ने कहा कि हिंसा के विरोध में एकजुटता दिखाने और पीड़िता के लिए प्रार्थना करने हेतु मशाल की रोशनी में जुलूस का आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।